interview with Divakar Singh at BHU campus on 2nd of May 2018, conducted by Ahili Chaudhary. Recording begins now. Divakar, if you can just give a bit of a personal history, ki kahan se aaye, kya kar rahe BHU mein, ghar pe kaun kaun hai?
I was born here in Varanasi itself, maternal grandparents ke ghar par, aur जौनपुर का रहने वाला हूँ. स्कूलिंग पार्टली मुंबई में हुई, प्रोबेबली 13 ईयर्स तक. घर में बड़ा था इसलिए पढ़ने के लिए वहाँ भेज दिया गया था. आई फेल्ड देयर इन 11th. 10th में 56-57% थे और काफ़ी इश्यूज थे एडमिशन को लेके, वहाँ मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं. तो 11th फेल हुआ पहली बार, तो आई लेफ्ट स्कूल और मैं भागा पहली बार घर से, अंकल आंटी के यहाँ से. फिर लौट कर आया तो मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं 11th फेल हूँ, और एक डुप्लीकेट मार्कशीट बनवा के खुद प्रिंट करा के घर पे दी. चीज़ें चल रही थी, 12th के लिए निकलता था घर से, और क्योंकि ट्रेन से जाना होता था सुबह की, तो घूमना दोस्तों के साथ, बंगाली फ्रेंड्स थे मतलब उनके साथ सारे काम जो स्कूल टाइम्स में हो सकते थे वो करता था. डैम्स घूमना, एडवेंचर प्लेसेस पे जाना, इवन 2 दिन तो मैंने शीप्स है वहाँ पर जो डायमंड फिट करती हैं अंगूठियों में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के साथ, तो मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन के भी 2 दिन गया, और वहाँ पे भी मैंने काम किया 2 दिन. फिर उसके बाद वो छोड़ा, फिर 12th मतलब एक बार फाइनली घर पे आने में लेट हो गया, तो आंटी वॉज टू मच स्ट्रिक्ट देयर, तो उस डर से कि फिर पिटाई पड़नी है आज, तो मैं भागा फाइनली. और मैं रात भर 2 दिन नहीं आया, तो मैं चेंबूर में लूम है, हैंड पावर लूम्स हैं, तो उनके लेबर्स के साथ, मुस्लिम पूरी बस्ती थी और उन्हीं के साथ दोस्ती थी, उन्हीं के साथ मैं सोया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे अंकल वगैरह ने हंट किया और पकड़ा, और फिर वहाँ से मैं डायरेक्टली वो एक बैग लिए हुए और एक जोड़े कपड़ा बॉम्बे से सीधे जौनपुर अपने घर. उन्होंने पूछा क्या चाहिए मुझे, कहा मुझे घर जाना है. इससे पहले भी मैं कई बार ये ट्राई कर चुका था घर आने के लिए, बट घर वालों को लगता था कि इमोशनल हो रहा है और नहीं पढ़ना चाहता बॉम्बे में, वहाँ रहेगा तो लाइफ सेटल हो जाएगी. फिर जौनपुर आया, जौनपुर में CBSE बोर्ड में एडमिशन होता है, फिर 12th फेल होता हूँ क्योंकि एक बार सिलेबस बोर्ड चेंज कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फिर फाइनली 3rd अटेम्प्ट में केमिस्ट्री कंपार्ट के साथ पास होता हूँ कैसे कैसे. फिर ग्रेड्स के लिए डीम यूनिवर्सिटी, 1 साल कानपुर कोचिंग में भी निकाल दिया जाता हूँ लड़ाई झगड़े के चलते 2 महीने बाद. फिर फाइनली डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है इलाहाबाद, वहाँ से बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल टेक्नोलॉजी का ऑनर्स ख़त्म करते हुए फिर BHU पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं. 2011 से 13 यहाँ पर MSc कंप्लीट करते हैं, फिर दिल्ली निकलते हैं UPSC की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पर CSAT का मूवमेंट होता है, CSAT हटाओ आंदोलन, और उसमें जुड़ते हैं वॉलंटरली और शुरू से जुड़ते हैं, और फिर वो मूवमेंट जिस तरीके से एंड होता है, सब कुछ टूटता है वहाँ पर. अचानक जो लोग स्टेज पर होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मनोज तिवारी आते हैं, वो बात करते हैं, वो सारे लोग स्टेज से गायब हो जाते हैं, अगले दिन पूरा स्टेज गायब हो जाता है, और काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं, लौट कर वापस बनारस रिसर्च के लिए आने का तय करते हैं, और आते हैं लौट कर बनारस, रिसर्च ज्वाइन करते हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, 1 साल तक वर्क करते रहे, फिर वो ड्रॉप करके फिर से PhD ली, फेलोशिप नहीं मिल रही थी, बट फिर अगेन नेट होने के बाद भी PhD में फेलोशिप एक पेपर आने के बाद मिलती, तो उसके लिए टाइम जाता है. उसी बीच पालमपुर का कैंप होता है स्वराज अभियान का, जिसमें मतलब ऑल ऑफ अ सडन कहीं से इन्विटेशन आता है, मैं ज्वाइन करता हूँ, लौट कर आता हूँ 8-10 दिन के बाद. तो MSc के एग्ज़ाम्स में एक डेली वेज वर्कर हम लोग को एग्ज़ाम्स में पानी पिलाया करता है पेपर के ड्यूरिंग, वो लोगों का एक पूरा मतलब समूह बैठा होता है लंका पे, तो उसको देखकर रुकता हूँ बात करने के लिए, तो पता लगता है कि ये सब डेली वेज वर्कर्स हैं जो 30-32 साल से नौकरी कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, और इनको परमानेंट होना था 98 के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रिजोल्यूशन के तहत, उनको परमानेंट नहीं किया गया है, और उनसे बात करने के लिए रुकता हूँ, और फिर उसी दिन मतलब ये लगता है कि मैं शायद हेल्प कर सकता हूँ, ये सोचते हुए फिर वो छः महीने का पूरा एक मूवमेंट 171 दिन चलता है, 4 जुलाई से। 22 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर बीएचयू आने वाले होते हैं नरेंद्र मोदी, और 21 की रात गिरफ्तारी होती है हम लोगों की। और
ये कौन सा साल है?
2016 2016 में गिरफ्तारी होती है, जाते हैं, फिर वहाँ से छूट के आते हैं तो ये बातें फैल चुकी होती है। और इसी मोमेंट के पहले जो स्ट्रेस स्ट्रेन हो रहा होता है उसमें एक बार सीजर अटैक आ चुका होता है, तो पीएचडी को लेकर भी मतलब 6 महीने में काफ़ी एबसेंट रहने लगते हैं, कोर्स वर्क्स ड्रॉप होते हैं, पैसा भी बहुत कम मिल रहा होता है, तो एक मन टूटता है क्योंकि काफ़ी एक्सप्लोइटिंग हो जाता था। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वहीं रहते थे, 4 घंटा सोने जाते थे, फिर अलग अलग गाँव में जाना, सभाएँ करना, लोगों को एग्जिट करना। आई वॉज अ नो वॉइस, मतलब बहुत नया था, मैं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, न मैं किसी को जानता था पूरे बनारस में या कहीं पर भी जो इन चीज़ों को समझता हो, जिससे मिलता था सबके लिए। मजदूरों का इशू बहुत बोरिंग सा इशू हुआ करता था, तो ग्लैमर नहीं था तो कोई आना नहीं चाहता था। और वो मतलब कुछ इंस्टेंस याद हैं, एक बार राज बब्बर आने वाले थे तो कांग्रेस के कोई किसान यूनियन के नेताजी आए थे, इंटक समथिंग, तो वो उन्होंने आया, वो झंडा वगैरह टांगे, तब तक मैं इतना समझ चुका था कि अभी लोग सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप इस पर वो एक छत डलवा दीजिए और कुछ पाइप्स की व्यवस्था कर दीजिए, इस पर झंडे वगैरह आप टांगेंगे। तो वो उतना उन्होंने किया, 2 दिन वो रुके, फिर उन्होंने फोटो वगैरह खिंचाई राज बब्बर आने वाले थे उनके साथ। उससे पहले यहाँ की आईसा यूनिट आई थी, जो आईसा और जो लेबर्स पार्ट देखते हैं सीपीआईएम की, वो यूनिट आई थी, तो उन्होंने भी कहा कि तुम हमारा झंडा यहाँ गाड़ो ये तो हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। तो फिर उन्होंने मना किया कि नहीं, हम अभी इस झंडे के साथ नहीं बैठेंगे। तो फिर वो अगर आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं तो, बट फिर वो चले गए उसके बाद। फिर वो दोबारा आते हैं कि हम कोई रैली निकाल रहे हैं, तो बेसिकली मतलब वो 54 से 60 लोग जो हम वहाँ बैठा रहा करते थे, हम लोग एक वो मॉब हो गए थे सबके लिए उस 6 महीने में। जब कोई प्रोटेस्ट करने लंका पर आता था तो वो उसको लगता था कि 60 तो वहाँ पर लोग हैं और लोगों को लेकर चलना है, और ये कंटिन्यूसली होने लगा। और तब से वो पूरा स्पॉट ही बकायदा, अब मतलब वो मैं देख रहा हूँ कि शायद उससे पहले भी होता हो बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं, लेकिन अब वो स्पॉट मार्कडअप हो गया है जहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली, लंका गेट अब वो हमारा प्रोटेस्ट स्क्वायर हो गया है। और इसी बीच फिर पीएचडी में कहीं और एडमिशन लिया, बायोमेडिकल में, फिर वो ड्रॉप किया, फिर आईआईटी में बायोकेमिकल में एडमिशन लिया। और उसमें एडमिशन लेके कुछ महीने बीते थे रिसर्च के, कि ये रेडी पटरी का जो दुकानें थी सारी इन्हें हटा दिया गया। उस केस में आए हम लोग, अचानक पुलिस का विरोध करने में वहीं धरने पे बैठे हैं और फिर गिरफ्तार हो जाते हैं और छूट कर आते हैं, तो मेंटर का फ़ोन आया होता है, बहुत अपोजिट तो नहीं होते हैं बट वो यही कहते हैं कि ये तरीका नहीं है, अगर राजनीति करना है तो और अलग अलग तरीके हैं जिसको अपनाओ, ये सब अच्छा नहीं लगता। इस बीच कई प्रोफेसर मुझसे ये बात कह चुके होते हैं कि मजदूरों के साथ सड़क पे बैठे रहते हो, आईआईटी में रिसर्च कर रहे हो, कुछ तो अपना वैल्यू रखो, तुम लोग क्यों नाम खराब कर रहे हो, कहीं और जाना है। इस बीचों बीच में कोई कंप्लेंट कर देता है एमएचआरडी में मेरे एडमिशन प्रोसीजर को लेके पीएचडी में, और फिर उस कंप्लेंट को एग्जैजरेट किया जाता है, फिर मेरी पीएचडी मुझसे छीनी जाती है, तो वो तीसरी पीएचडी वहाँ पर ड्रॉप होती है। और फिर फाइनली इस बार 2017 के दिसंबर में एनएफएल से एनरोलमेंट ली है और ये चौथी पीएचडी में अपनी अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसको अभी 4-5 महीने बीते हैं, जिसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं। ये तो पूरा एकेडमिक्स का सफर रहा।
बट इस दौरान जैसे आपने कहा कि मतलब स्वराज अभियान का शुरुआत होना, प्लस यू सॉर्ट ऑफ स्पोक अबाउट द रेरी पटरी का आंदोलन, तो उससे बाकी जेएसी और फिर जो बीएचयू के जो मुद्दे आप यहाँ पे उठे जेंडर एंड सोशल जस्टिस पे, उसके साथ कैसे जुड़ाव हुआ?
एक्चुअली मैं कुछ अलग था नहीं, मतलब आप किसी को कंपार्टमेंट्स में नहीं डाल सकते हो। एक तो जब बोलने वाले लोग, मतलब जो मैं बाद में समझ पाया धीरे धीरे, मैं उस लेबर्स मूवमेंट के ही जर्नी में कई लोगों से जुड़ा, जिसमें विष्णु भैया एक थे, मतलब मैं धनंजय से जुड़ा, रवि शेखर, एकता शेखर, फिर वो पूरी टीम जो स्वराज अभियान की जो बनारस में थोड़ी थोड़ी काम करती थी, एसपी राय, इस तरह के तमाम लोग मुझसे जुड़े।
another 15-20 minutes.
फिर काफ़ी लोग उसमें जुड़ते गए और मतलब कुछ ना कुछ सीखता गया मैं. वो मेरे लिए पैकेट्स में आया. वो कभी भी मतलब ऐसा इवोल्यूशनरी नहीं रहा कि मेरे पास वो स्टेप्स में आया हो किसी ट्रेनिंग के साथ, बट वो ऑर्गेनिकली आता गया और लोग इसमें मिलते गए. और
एक मिनट.